के भर भाल पर, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।
ओम शांति। आज का सुमन बेहद के वैराग्य का दधकते हुए हम सभी ज्वालामुखी हैं। इस साधना के पथ पर बाबा जैसे पवित्रता को महत्व देते हैं, उससे अधिक वैराग्य की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं है तब तक हमारी पवित्रता भी नहीं बढ़ती है। पवित्रता में ही वैराग्य समाया हुआ है। साधना के पथ पर चलने के लिए वैराग्य अति आवश्यक है। जितना वैराग्य मजबूत होगा उतना हमारी साधना की बिल्डिंग भी लंबे समय तक टिकी रहेगी, अंत तक टिकी रहेगी। और जितना वैराग्य ज़्यादा है उतनी मन की एकाग्रता बढ़ी रहती है, उतना हमारी पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ती रहेगी, उतना हम इस ब्राह्मण जीवन का सुख अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा के महावाक्य भी हैं, बिना बेहद के वैराग्य के साकाश देने की सेवा नहीं की जा सकती। जब तक हमारा वैराग्य अच्छी तरह से पुष्ट नहीं है तब तक हमारा पुरुषार्थ लड़खड़ाता रहेगा। और हम देखेंगे हमारा वैराग्य खंडित कहाँ होता है, कौन से ऐसे कारण हैं जिससे वैराग्य नष्ट होता है या कम होता है, और उस वैराग्य को प्रज्वलित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए हमें कौन कौन से घटकों की जरूरत है। वैसे तो संसार में देखें वैराग्य आदमी संसार में बहुत होते हैं। कोई परिस्थिति आती है तो वैराग उत्पन्न हो जाता है, घर बार छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हम सब का वैराग्य है बेहद का वैराग्य और समझ के साथ वैराग्य है। संसार में जो वैरागी होते हैं भले वो घरवार छोड़ दिया लेकिन बुद्धि में फिर भी कुछ ना कुछ संकल्प चलते रहते हैं। यहाँ भी ऐसे है, लेकिन बाबा हमको इन चीज़ से भी ऊपर ले जाने का मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि बाबा स्वयं वैराग्य का सागर है। तो अगर हमको उसके प्यार का अनुभव करना है, उसके समान बनना है, तो उस वैराग्य को निरंतर प्रज्वलित रखने की आवश्यकता है। और वैराग्य हमारा अगर देखा जाए तो दो चीज़ों पर आधारित है, वैराग्य नष्ट होना या वैराग्य पुष्ट करना, और वो है देह और देही, आत्मा और शरीर। जब हम देही अभिमानी अवस्था में हो जाते हैं तो संसार के राग द्वेष, संसार के संकल्प विचार, संसार की स्मृतियाँ, संसार के दृश्य संबंध वो धीरे धीरे नीचे गिर जाते हैं और वैराग्य खत्म होता है देहबान से। जैसे देहबान की स्मृति आती है तो देहबान के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है साथ में। इसलिए बाबा के महावाक्यों का सार भी एक ही लाइन में है कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। जब तक हमारा ये पहला पाठ पक्का नहीं है तब तक वैराग्य हमारा लड़खड़ाता रहेगा। भले हम सेवाओं के क्षेत्र में भाग दौड़ करें या अच्छी स्पीच कर लें, प्रख्यात हो जाएं, लेकिन वैराग्य की अवस्था को जमाने के लिए स्वयं पर ही गहराई से नज़र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि देहबान में आने से जो हम सेवा करते हैं उसमें प्राप्तियां बहुत हैं और वो दिखाई देती हैं। जैसे हम सेवा करेंगे तो मान सम्मान हमारे इर्द गिर्द घूमने लगेगा और उसमें फंस जाते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का मान सम्मान है, लौकिक है, अलौकिक है, क्योंकि वो सब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन जो देही अभिमानी बनने की साधना है ये सारी गुप्त है, इसमें कोई कुछ पूछने वाला नहीं है सिवाय भगवान के। तो हमारा संसार जैसा वैराग्य नहीं हो कि कोई घटना घट गई, किसी ने शरीर छोड़ दिया तो वैराग्य आ गया, जिसको शमशानी वैराग्य कहा जाता है। जो हमें साथ देने वाला है वो ही हमारा साथ छोड़ के चला गया, धोखा दे के चला गया, तो वैराग्य आ गया। हम सब ब्राह्मणों का वैराग्य का बीज ज्ञान है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि यहाँ सभी ऐसे नहीं आए कोई घटना घटी तो ही हम बाबा का बने हैं, ऐसा भी है, लेकिन फिर भी समझ के साथ हम सबको वैराग्य उत्पन्न हुआ है। तो वैराग्य को प्रखर करने के लिए, निरंतर हमारा वैराग्य बढ़ता रहे, उसके लिए हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो है देही अभिमानी स्थिति का बार बार अभ्यास। क्योंकि देहबान में आने से हमारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, हम इसी संसार में डोलते रहते हैं, हमारे विचार देहधारियों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, देह के संबंधों के ही चिंतन में चलते रहते हैं, देह के संस्कार ही हमको खींचते रहते हैं, देह की दुनिया में ही हम विचरण करते रहते हैं। या अपनी देह को जाने संवारने में कहो, देह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारा चिंतन चलता रहता है। तो इस देही अभिमानी अवस्था को परिपक्व करने के लिए, ताकि हमारा वैराग्य भी उतना परिपक्व हो जाए, तो इस देही अभिमानी अवस्था को शक्तिशाली, निरंतर, सजग, सतर्क, ये तो एक इंटरनल अभ्यास है, एक आंतरिक अभ्यास है। तो निरंतर इसकी ज़रूरत है, देही अभिमानी स्थिति। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके मुझे याद करो, आत्मा समझकर। बाकी दूसरी जो अवस्थाएं होती हैं, चाहे वो फरिश्ता अवस्था है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा देह की आकृति तो हमारे मानसिक पटर पर बनी रहती है। लेकिन जब देही अवस्था है, जिसको बीज रूप अवस्था भी कहेंगे, कि देह है ही नहीं, वो एक शक्तिशाली अवस्था है, वो एक परम धाम की अवस्था है, बाबा की समानता की अवस्था है वो। क्योंकि वो हमको अपने समान बनाने के लिए आया हुआ है, अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ है। इसलिए परसों के मुरली में था ना, साथ चलने में मजा है। तो हमें देही अभिमानी अवस्था को जमाने की निरंतर सतत प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो देह बांध में आने से हमारे वैराग्य को नष्ट होने में टाइम नहीं लगता है। और वैराग्य को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के माया के भिन्न भिन्न रूप हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाते ही रहते हैं, और वो अलग अलग तरीके से हैं, चाहे वो साधनों के रूप में हैं, चाहे वो संबंधों के रूप में हैं, चाहे वो पदार्थों के रूप में हैं। तो वैराग्य धीरे धीरे हमारा नष्ट हो जाता है, तो संसार के प्रति राग उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है। तो इस वैराग्य को और शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ एक ऐसे स्थान है जिनका पहले भी जिक्र कर चुके हैं, अगर उन स्थानों का हम स्मरण करें तो भी हमारा वैराग्य निरंतर बना रहेगा, धधकता हुआ रहेगा। कोई भी हमारे संबंध हम संबंध संपर्क में किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं तो हमारा वैराग्य कम नहीं होगा। और वो स्थान है, सबसे पहला स्थान है मधुबन, और उसमें भी केवल मधुबन ही, मधुबन में सत्संग अगर उसका यथार्थ लाभ उठाएंगे तो, नहीं तो कई बार सत्संग भी दूसरे तरफ लेकर चले जाता है। हाँ जी, डिबेट, सत्संग ही डिबेट बन जाता है, वाद विवाद का अखाड़ा बन जाता है। तो एक तो हम निरंतर सत्संग संसार में भी देखेंगे, जितना समय गृहस्थ व्यवहार वाले जाते हैं सत्संग में उतना समय उनकी स्थिति अच्छी रहती है, और घर में आते हैं फिर जैसे को तैसे हो जाते हैं। और बाबा भी हमको यहाँ कहते हैं कि बच्चे जब महावाक्य सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, तब तो अवस्था अच्छी रहती है, लेकिन फिर जैसे बाहर निकलते हैं तो माया की गोद में चले जाते हैं। तो निरंतर हमारा जो मन है इससे इसी को एक सत्संग का स्थान बनाना है, सत्य के संग में रहने की प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा स्थान एक तो गया मधुबन, दूसरा स्थान सेंटर सेवा केंद्र। सेवा केंद्र भी एक वैराग्य को पुष्ट करने का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब हम घर से निकल आते हैं उस सेवा केंद्र पर आते हैं तो वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ के जो वाइब्रेशन होते हैं वो घर में नहीं मिल पाते हैं। वो वाइब्रेशन ही हमको संसार से अलग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए सेवा केंद्र भी एक वैराग्य का स्थान है, क्योंकि वहाँ जो निरंतर साधना चलती रहती है, वहाँ जो आने वाली आत्माएं हैं, भाई बहन हैं, वो भी अपने मानसिक लेवल को ऊंचा उठाने के लिए ही आते हैं। उनकी जो मानसिकता होती है वहाँ इस मानसिकता से नहीं आते हैं कि हमारा पुरुषार्थ वहीं रुका है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने की मानसिकता के लिए आते हैं। तो उस मानसिकता जो उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन है, प्रकंपन है, वो भी हमारे वैराग्य को पुष्ट करते हैं। तो एक तो दूसरा हो गया सेवा केंद्र, तीसरा हाँ धार्मिक स्थल। सभी ने अनुभव किया होगा जो भी धार्मिक स्थल होते हैं, गुरुद्वारा है, मंदिर हैं, वहाँ भी जाते हैं, चर्च हैं, मस्जिद हैं, वहाँ भी जाते हैं तो स्वतः ही वैराग्य जागृत होता है। गीत तो सुन लिया सबने, हाँ परमानेंट कोई नहीं है, तो इस गीत को बार बार सुनते रहना, सुखदेव भाई से संपर्क रहना इस तरह के गीतों के लिए। तो धार्मिक स्थल भी हमारे वैराग्य को पुष्ट करने का एक साधन है। अगला स्थान है प्रकृति की गोद, जहाँ हम एकांत में चले जाते हैं और गहरे चिंतन में चले जाते हैं, तब पता चलता है कोई अपना नहीं है। हम तो उस जैसे एक पक्षी घोंसले में आता है, दिन भर उड़ता रहता है, रात को घोंसले में आके फिर अपना उड़ान भर देता है, छोड़ देता है वो। उसी तरह हम भी एक पक्षी की तरह है, ये हमको टेम्परेरी घोंसला मिला हुआ है और इसको भी छोड़ के जाना है, या दूसरे शब्दों में कहें जैसे सराय की तरह है ना, सराय में यात्री आता है, रात को ठहरता है, चला जाता है, उसका अपना कुछ नहीं होता है। उसी तरह हम सभी भी इस तरह इस संसार में यात्री हैं, ये संसार एक सराय की तरह है, और सराय में जो यात्री ठहरता है उसका सामान के साथ कोई लगाव नहीं होता, कोई अटैचमेंट नहीं होती है। तो हम इस देह रूपी सराय में बैठे हैं, थोड़ी समय के लिए हैं, वापस लौटना है। तो एक है धार्मिक स्थल, ये भी एक हमारे वैराग्य को पुष्ट करने का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है शमशान घाट, सबसे बढ़िया है, तो वहाँ तो बार बार जाते रहना चाहिए। उसके अलावा हॉस्पिटल, जनरल वार्ड, हाँ तो वार्निंग वार्ड जो होते हैं, तो वहाँ हॉस्पिटल में जाते रहेंगे तो भी वैराग्य जागृत रहेगा। और खुद की बीमारी जब आती है, जब खुद इंसान बीमारी से जूझता है तो भी वैराग्य जागृत होता है, नहीं तो कई बार बीमारी से उल्टा भी होता है, वैराग्य होता भी नहीं है, लोग पूछने आते रहते हैं ना, दुखी हो जाते हैं। तो भी ये भी वैराग्य को पुष्ट करने का साधन है। और कौन सा स्थान है, परमधाम, है जी हाँ, प्राकृतिक आपदाएं या वैराग्य के लिए जो परसों बताया था एक खबर, हमने कल खबर और पढ़ी और वो भी ऐसी थी। डॉक्टर दंपत्ति ने अपने आप को जवान बनाने के लिए दो महिलाओं को खा लिया, मांस पका के खाया। बताओ, ऐसे ऐसे संसार की हालत है। ऐसी खबरें पढ़ के वैराग्य आता है, कैसे कैसे इंसान संसार में हो गया है, कैसी वृत्ति वाले हो गए और उस संसार में हम रह रहे हैं। परसों का सुनाया था, वो तो बेटे ने माँ को काट के उसका खून पी लिया और मांस खाता रहा, तो वो सुनते हुए शक्ल कैसी हो रही है। हाँ, तो सुननी चाहिए वो भी कि रावण की, रावण संसार में क्या क्या कर रहा है और उस समय अनुसार हमारा क्या कर्तव्य बनता है, क्या दायित्व तो बनता है। बाबा ने तो कहा, समय अनुसार तुम्हारी बेहद की वैराग्य वृत्ति इतनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि संसार की आत्मा में वो ताकत नहीं है। पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, संसार की आत्मा भटक रही है, दुखी है, अशांत है, पुकार रही है, है ना, तो उनको राहत कौन देगा। और वैराग्य की स्थिति में ही हम सब आत्माएं गहरी शांति का अनुभव कर सकती है, गहरी एकाग्रता होगी। गहरी एकाग्रता से ही मन से सेवा की जा सकती है। अगर हमारी एकाग्रता भंग हो रही है, मन बुद्धि भटक रहा है, तो हम कैसे सकाश देंगे, कैसे दूसरों को अनुभूति करा पाएंगे। इसलिए वैराग्य से संबंधित हमको निरंतर, चाहे वो लिटरेचर पढ़ें, चाहे वो चिंतन करें, चाहे अभ्यास करें, चाहे कहीं किसी स्थान पर जाएं, तो हमको वैराग्य के प्रति निरंतर सजग रहना है। क्योंकि वैराग्य जितना प्रगाढ़ होगा, जितना शक्तिशाली होगा, हमारी साधना भी उतनी अचल अटोल अखंड होगी। तो एक है वैराग्य के लिए एक न्यूज़। दूसरा बताया वैराग्य का स्थान परमधाम, वो भी एक वैराग्य का वहाँ जैसे सागर बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ पहुँचने से ही इस संसार से हम विस्मृत हो जाते हैं और वहाँ की सारी शक्ति हमारे स्वयं में जो स्वाद मिलता है उस शक्ति का हम अनुभव करते हैं, तो इस संसार के सुख स्वतः फीके हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ये हम सबको ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के बाद संसार के प्रति हमारे आकर्षण क्यों कम हो गए, समझ मिल गई हमको, है ना। संसार के जो खाने पीने के पदार्थ हैं, उनको खाने पीने के लिए हमारा मन ललचाता कभी करता, मन हम बाजार में जा रहे हैं, कभी गुलाब जामुन है, कितनी मिठाइयाँ बन रही हैं, पकवान बन रहे हैं, दिवाली की कितनी तैयारियाँ होती हैं, हमारा मन बुद्धि वहाँ जाता है कहीं नहीं, स्वतः वैराग्य आ गया। तो जितना हम ऊपर वाले के साथ कनेक्शन जोड़ के रखेंगे, तो वैराग्य निरंतर हमारा स्वतः प्रखर होता जाएगा, शक्तिशाली बनता जाएगा, धधकता रहेगा निरंतर। अर्थात हमें फिर हम समन्वय संपर्क में आने से ना हम प्रभावित होंगे, बल्कि दूसरों को भी हम बाबा के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। अर्थात वो स्वतः ही आकर्षित होंगे हमारे प्रति, नहीं बाबा के प्रति। तो एक है परमधाम। दूसरा नेक्स्ट कौन सा स्थान हो सकता है, सूक्ष्म वतन, वो भी एक वैराग्य का स्थान है। और कौन सा स्थान हो सकता है, सतयुग। हाँ, जितना हम अपने दैवी संस्कारों का स्मरण करेंगे, उनका अनुभव करेंगे, सतयुग के सीन सिनेरियो को मन बुद्धि में लाएंगे, तो स्वतः पुरानी बातें अपने आप छूट जाएंगी। और कौन सा स्थान है, आर्ट की दुनिया, पेंटिंग दुनिया, हाँ आर्ट गैलरी, इस तरह के जो स्थान होते हैं, संग्रहालय जो होते हैं, म्यूजियम, वो भी एक इसके स्थान है, वैराग्य के स्थान है। और कौन सा स्थान है, कुंभ मेला, गंदगी वहाँ जाओ देखो, वहाँ से वैराग्य आएगा। हल्दी घाटी, युद्ध के स्थान, वो भी वैराग्य वाली चीज़ें हैं। और झोपड़ी, बाबा की झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी, हाँ संसार की जो दयनीय हालत है, स्लम एरिया हैं, जो स्लम बस्तियां हैं, अगर उनको देखेंगे हम तो भी वैराग्य जागृत है, कहाँ इंसान जी रहा है, कहाँ थे और कहाँ पहुँच गया संसार, भारत का क्या हाल हो गया, तो भी वैराग्य आएगा। और हाँ, वो आजकल हाँ होता है कि बाहर तो दिखता है झुग्गी झोपड़ी और अंदर से करोड़ोंपति होते हैं, अंदर में वो वाली सुविधाएं होती है जो साहूकारों के पास भी नहीं होती है, वो भी ऐसे भी दिखता है। तो हमारा वैराग्य नहीं है, ऐसा नहीं हो कि बाहर से तुम वैराग्य दिख रहे हो और अंदर साधनों का अंबार लगा हुआ हो। तो बाबा तो कहते हैं, वैसे तुम बच्चों को मैंने सारे साधन दिए हो, साधन होते हुए भी, जैसे ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल देते थे कि बाबा के पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन होते हुए बाबा बेहद के वैरागी रहे। तो बाबा कहते हैं, ऐसे अंत तक साधनों का तो अंबार रहेगा, लेकिन उन साधनों के होते हुए भी तुम्हारी साधना खंडित नहीं होनी चाहिए, वैराग्य कम नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा ने अपने लिए यूज़ नहीं किया, सब बच्चों को दे दिया, तो उसी तरह साधन भले अंबार जितने भी लगे हों लेकिन हमारी उसमें आसक्ति नहीं हो, बुद्धि में नहीं जाए। दूसरा, साधनों में हमारा वैराग्य खंडित कब होता है? जब हम तुलना करते हैं दूसरों के पास में जो साधन है हमारे से, अगर ज़्यादा साधन है दूसरों के पास तो स्वतः बुद्धि से, क्योंकि तुलना करने के संस्कार को एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, है ना। चाहे कपड़े हैं किसी ने पहने हुए, अगर हमारे से अच्छे कपड़े किसी ने पहने तो अपने आप थोड़ा बुद्धि जाएगी, एक बार तो पूछ ही लेंगे उसको, चौल कहाँ से आई ये, है ना, है एक्स्ट्रा है क्या या इसी को देना है क्या, हाँ एक मंगवा देना, पैसे मैं दे दूंगा। तो ऐसे हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, तो बड़ा उपराम वृत्ति। तो ऐसे वैराग्य के घटक हैं, स्वतः हमको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वैराग्यों को खाती जा रही हैं, क्योंकि जितना वैराग्य हमारा मजबूत है साधना स्वतः होती जाएगी, मन बुद्धि को एकाग्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि अपने आप ही एकाग्र होगा अगर हम निरंतर अपने वैराग्य को पुष्ट करते रहेंगे तो। अन्यथा वैराग्य अगर कम हो गया तो कहीं ना कहीं हम धोखा खा जाएंगे। दूसरी बात है, वैराग्य और पुष्ट करने का एक साधन है, हम चिंतन करें कि संसार में जितने भी हमने सुख भोगे हैं उन सुखों का परिणाम क्या रहा, उन सुखों से क्या मिला हम सबको, दुख मिला, धोखा मिला, कुछ परिणाम तो हमारे हाथ में नहीं आया, उनका भी चिंतन। इंद्रियों का दोष क्या है, इंद्रिय दोष क्या है, दुख देने वाली है, इसलिए है जी असंतुष्टता का भाव बना रहता है, तो ये भी एक कारण है। और कोई वैराग्य की चीज़ें, कसाई घर तो वहाँ जाने का। हाँ देखो, हाँ माना संसार में जो लोग काट मार काट करते रहते हैं वो चिड़खाना जिसको कहते हैं कसाई घर, तो वो भी ये सारे स्थान हैं वैराग्य के, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मोर्चरी हाँ, डेड बॉडी के पास पूरा दिन पूरी रात बैठे रहो, अपने शमशान वैराग्य आएगा आपको। हाँ या तो फिर हाँ जेल खाना है, फिर ऐसे संसार में विकलांग लोग हैं बेचारे, उनको जिसको दिव्यांग भी कहा जाता है अभी, तो बाबा ने तो हम सबको इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, तो हमारे जो अपने कर्तव्य है उनके प्रति हम जागरूक रहेंगे तो दूसरों को भी हम रास्ता दिखाने के निमित्त बन सकते हैं। और वैराग्य का अनाथ आश्रम है, इस तरह की चीज़ें, बूढ़ा घर है, हाँ बूढ़े घर को देखो संसार में कैसे कैसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ही अपने माँ बाप को निकाल देते हैं घरों से, और इतने बड़े बड़े अहदे पर होते हैं उनके, उनकी संतान आए ऐसे तक होते हैं लेकिन माँ बाप बूढ़ा घर में रहते हैं, ऐसे ऐसे संसार की हालत है। तो वैराग्य तो अपने आप फिर प्रकट होता जाएगा। और मेंटल हॉस्पिटल, और हाँ हाँ अच्छा, कुष्ठ रोगियों का हॉस्पिटल, हाँ तो वो भी एक बर्न वार्ड है, कुष्ठ रोगियों का है, तो ये सब डॉक्टर तो सचमुच नेक्स्ट टू गॉड ही है, पता नहीं कैसे रहते हैं उधर। कुछ नहीं होता, आदत पड़ जाती है, लेकिन वही डॉक्टर बाहर आके फिर बैराग वैराग सब भूल जाता है। जल्लाद, हाँ जल्लाद को बैराग थोड़ा होता है, तो एक आदत पड़ जाती है ना, मार काट की, चीरने फाड़ने की आदत पड़ जाती है, जैसे कारपेंटर होता है लकड़ी को काटता रहता है, ऐसे डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं, शरीर को काटते रहते हैं, हाँ जी हड्डियों को ठोकते रहते हैं। तो इस तरह से वैराग्य को पुष्ट करने के लिए स्वयं को चिंतन करना है कि कैसे हमारा वैराग्य बढ़ता रहे। सुपरमार्केट, हाँ संसार में इतनी सारी चीज़ें हैं, सुपरमॉल में जाओ तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि उनके बिना भी हम कितने खुश रहते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। सुकरात ऐसे करता था, तो हम सभी वही है ना, सुकरात ही हैं। और वास्तव में देखो कौन सी चीज़ इतनी आवश्यकता है नहीं है, ऐसे प्राणिक एनर्जी में बताया फूड की कितनी जरूरत है, शरीर को कितनी है, बस दो रोटी चाहिए, बाबा भी क्या कहते हैं, बस दो रोटी चाहिए लिक्विड, वो तो उस समय की बात है ना, अभी की बात है वो तो लिक्विड में परिवर्तन हो गया ना, पापड़, दो रोटी के साथ एक कटोरी सब्जी, हाँ हाँ वो साथ में दूसरे पापड़, एक लस्सी का गिलास, एक सलाद की प्लेट चाहिए, बाद में कुछ मीठा खाने के लिए चाहिए, अचार भी चाहिए, टोली बिछाई है बाद में, तो ये सारी चीज़ें बाद में उसके रिश्तेदार हैं, दो रोटियों के रिश्तेदार अलग अलग। तो इस तरह से वैराग्य को पुष्ट करने के लिए अपने चिंतन को बढ़ाना है। बाकी जो कल के क्वेश्चन थे वो लास्ट वाले दिन में करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा गहरे क्वेश्चन है। वैराग्य किन किन चीज़ों से आना चाहिए? हाँ, वो तो सबसे पहले बताया, सबसे तो पहले अपनी देह से वैराग्य, देह के संबंधों से, देह के संस्कार, देह का स्वभाव, देह के पदार्थ, देह के वस्तुओं आदि पदार्थ आ गए ना उसमें, कहें जी स्थान से। हाँ, स्थान से वैराग्य आना चाहिए, नहीं तो कभी स्थान से अटैचमेंट होती है, पद से, धन से, फैशन से, कपड़ों से, हैं जी, हेल्थ, वेल्थ, व्यर्थ से वैराग्य नहीं, वेल्थ से भी है, जो बॉडी मसल ऐसे कई बार उनको भी होता है, अपने सौंदर्य का ही किसी को बहुत राग होता है। और साइड सीन, घूमने फिरना का, घूमने फिरने के लिए नहीं, साइड सीन ऑफिस से नहीं डिजिटल वर्ल्ड मेन तो सबसे बड़ा आजकल सारा इसी में सिमटता जा रहा है, जब इससे छूट जाएंगे तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा, वही है वैराग्य को खा रहा है दिन प्रतिदिन, खा के मोटा हो रहा है। ओम शांति।
धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूं। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूं मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।